परमेश्वर की धार्मिकता जो सुसमाचार में प्रकट हुई। रोमियो अध्याय 1 वचन 16 और 17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हमें परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना ही चाहिए। प्रेरित पौलुस मसीह के सुसमाचार से लज्जित नहीं हुआ, उसने प्रभावशाली रूप से सुसमाचार की गवाही दी। हालांकि कई लोगों के रोने का एक कारण यह है कि वे अपने पापों के कारण यीशु में विश्वास करते हैं, यह परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार करने में उनकी अज्ञानता के कारण भी है। हम परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करने और अपनी धार्मिकता को त्याग करने के द्वारा बचाए जा सकते हैं। प्रेरित पौलुस सुसमाचार से लज्जित क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले यह इसलिए था क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई थी। ग्रीक में सुसमाचार, यूगेलियोन का अर्थ है सुसमाचार। जब यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ तो परमेश्वर ने दूत ने प्रकट होकर उन चरवाहों से कहा जो रात में अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में से जिसने वह प्रसन्न है शांति हो। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 14। यह सुसमाचार था मनुष्य में से जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रभु के सुसमाचार ने हमें सारे पापों से बचाया और संसार के पापों को धो दिया। यीशु ने हमारे सारे पापों को धो दिया। उन्होंने स्वयं उन लोगों के सारे पापों को धो दिया जो ढीलों में कीड़ों की तरफ फुसफुसाते थे और जिन्होंने कीचड़ में पाप किया था। सबसे पहले प्रेरित पौलुस ने कहा कि परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार में प्रकट हुई थी। परमेश्वर की धार्मिकता उस सुसमाचार में प्रकट हुई जिसने हमारे सारे पापों को मिटा दिया। परमेश्वर की धार्मिकता ने हमें संत और धर्मी बनने की अनुमति दी। इसने हमें अनंत जीवन प्राप्त करने और पाप रहित होने की भी अनुमति दी। मनुष्य की धार्मिकता क्या है? जब हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ हो तब हम लोग परमेश्वर के सामने खुद को दिखाना पसंद करते हैं। अच्छे कर्म करने का अपना अभिमान इकट्ठा करना मनुष्य की धार्मिकता को विचित्र करता है। हालांकि यीशु के धर्मी कार्य ने हमें हमारे सभी पापों से बचाया जिससे परमेश्वर की धार्मिकता सुसमाचार में प्रकट हुई। यह परमेश्वर की धार्मिकता है। इन दिनों ज्यादातर मसीही परमेश्वर की धार्मिकता के सुसमाचार को जाने बिना सुसमाचार का प्रचार करते हैं और वे कहते हैं यीशु पर विश्वास करो और तुम बच जाओगे और अमीर बन जाओगे। हालांकि ये परमेश्वर की धार्मिकता के सुसमाचार की शिक्षाएं नहीं है। सुसमाचार किसी भी चीज से अधिक लोकप्रिय प्रतीत होता है, परंतु अधिकांश लोग अज्ञानी हैं और सुसमाचार को नहीं समझते हैं। यह इस तथ्य के समान है कि बाइबल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, लेकिन अभी भी लोग वास्तव में इसके विषय वस्तु को नहीं जानते हैं। इस जगत में सबसे कीमती और लाभकारी चीज है सुसमाचार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। परमेश्वर का सुसमाचार रेगिस्तान में एक हरित भूमि की तरह है। यीशु उन पापियों के पास आया जिन्होंने बहुत से पाप किए थे और अपने सभी पापों को धो दिया था। हालांकि लोगों ने अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का प्रयास किया, उसमें उसकी धार्मिकता के उपहार को अस्वीकार कर दिया जिसने जगत के पापों को धो दिया है। जो लोग अपने स्वयं के प्रयासों, सेवा समर्पण, जोश, भेंट, पश्चाताप की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना, प्रभु के दिन का पालन करना, परमेश्वर के वचन का अभ्यास में लाना वैसे दिखाते हैं और परमेश्वर के उपहार को अस्वीकार करते हैं, वे उसकी धार्मिकता को अस्वीकार करते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति अपनी धार्मिकता का त्याग करे। उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। उत्पत्ति अध्याय 3:21 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। प्रथम मनुष्य आदम ने शैतान की चाल में फंसकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। आदम और हव्वा ने पाप करने के ठीक बाद अंजीर के पत्तों के आपस में सिलकर और अपने लिए कपड़े बना लिए थे। सिले हुए अंजीर के पत्तों से बने वस्त्र खाल से बने वस्त्रों से बिल्कुल विपरीत थे। यह मनुष्य की धार्मिकता और परमेश्वर की धार्मिकता के बीच का अंतर था। उत्पत्ति अध्याय 3:7 में लिखा है, उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। क्या आपने कभी मूली के पत्ते तोड़े हैं? हम कोरियाई मूली से मूली के पत्ते काटते हैं और उन्हें सुखाने के लिए चावल के भूसे के साथ जोड़ते हैं। हम सर्दियों में उनके साथ बीन पेस्ट स्टू पकाते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। आदम और हवा ने पाप करने के बाद अंजीर के पत्तों को एक साथ जोड़ा और वस्त्र बनाए। इस तरह के कृत्य अच्छे कर्म, आत्म परीक्षण और आत्म बलिदान मानव धार्मिकता का गठन करते हैं। यह आत्मिक धार्मिकता है, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं। यह तथ्य कि उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने वस्त्र बनाए, ये परमेश्वर के सामने अपने अच्छे कामों के साथ अपने पापों को छिपाने की कोशिश करके गर्व के पाप को दर्शाता है। अपनी धार्मिकता, अपनी भक्ति, आत्म बलिदान, आत्म परीक्षण, सेवा और पश्चाताप की प्रार्थनाओं को एक वस्त्र में बांधना और अपने मन में पापों को इसके साथ ढकना मूर्ति पूजा है, जो परमेश्वर के सामने व्यक्ति के गर्व को दर्शाया करता है। क्या हम अंजीर के पत्तों को सिलकर वस्त्र बनाने के द्वारा परमेश्वर के सामने अपने पापों को अपने हृदय में छिपा सकते हैं? कभी नहीं। एक ही दिन में पत्ते गिरना शुरू हो जाएंगे और तीसरे दिन सभी पत्ते गिर जाएंगे। सब्जियों से बने कपड़े ज्यादा देर तक नहीं टिकते। जो लोग अंजीर के पत्तों को एक साथ सिल लेते हैं और वस्त्र बनाते हैं, अर्थात जो अपने कर्मों से परमेश्वर की अच्छी तरह से सेवा करके धर्मी होने का प्रयास करते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम अपने कर्मों की धार्मिकता से पापों की माफी प्राप्त नहीं कर सकते। जब आदम और हव्वा ने अंजीर के पत्तों से वस्त्र बनाकर अपने पापों को छिपाने की कोशिश की, तो परमेश्वर ने आदम को बुलाया, आदम तुम कहां हो? उसने वाटिका के पेड़ों में छिपकर कहा, मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपा लिया। क्या पाप करने वाला व्यक्ति पेड़ों के बीच छिपने की कोशिश करता है? पेड़ अक्सर बाइबल में पुरुषों को सूचित करते हैं। जिसके मन में पाप है वह अपने आप को लोगों के बीच छिपाने की कोशिश करता है। वह बीच में बैठना पसंद करता है, न कि बहुत पीछे या कलीसिया के सामने जहां कई लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। क्यों? क्योंकि वह खुद को लोगों के बीच छुपाना चाहते हैं। हालांकि वह अपने पापों को परमेश्वर के सामने नहीं छिपा सकता। उसे अपनी धार्मिकता को त्याग कर और प्रभु की धार्मिकता में विश्वास करके अपने पापों की माफी प्राप्त करनी चाहिए। जो लोग अस्पष्ट विश्वास रखते हैं और जो सत्य में विश्वास नहीं करते हैं, वे लोग भी खुद को उसी तरह के लोगों के बीच छिपाते हुए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग अपने अच्छे कर्मों से अपने पापों को छिपाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ उसका अंत नरक में होगा। परमेश्वर के सामने पापियों को पापियों के रूप में प्रकट होना चाहिए और स्वयं को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। परमेश्वर ने आदम से पूछा, जिसने अंजीर के पत्तों से वस्त्र बनाए थे, तूने फल क्यों खाया? तुम्हें किसने सिखाया और खिलाया? हे परमेश्वर, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया है, उसने उस वृक्ष में से मुझे दिया और मैंने खा लिया। हव्वा, तुमने ऐसा क्यों किया? सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। तब यह परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, इसलिए सांप अपने पेट पर रेंगते हैं। फिर से परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा, तुमने भी पाप किया है। तुम जो पाप के बहकावे में आए और जिसने तुमको पाप करवाया, दोनों एक समान हो। आजकल झूठे भविष्यवक्ता भी झूठे सुसमाचार का प्रचार करते हुए कहते हैं, आग प्राप्त करो। जो लोग उनके द्वारा बहक जाते हैं, उनके साथ भी झूठे भविष्यवक्ताओं के समान व्यवहार किया जाएगा और वे नरक में जाएंगे। परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। प्रभु ने सोचा, मैं आदम और हव्वा को अकेला नहीं छोड़ूंगा, जिन्होंने शैतान के बहकावे में आकर पाप किया था। मैंने मूल रूप से उनके स्वरूप में मनुष्य को बनाने और उन्हें अपना पुत्र बनाने का मन बना लिया था, इसलिए मैं अपनी योजना को पूरा करने के लिए उन्हें बचाऊंगा। यह योजना परमेश्वर में थी, इसलिए परमेश्वर ने उनके पापों को एक जानवर के ऊपर पारित कर दिया। जानवर को मार डाला, उसकी खाल उतार दी और उसके चमड़े से अंगरखे बना लिए और आदम और हव्वा को अंगरखा पहना दिया। उसने इसे हमारे उद्धार का प्रतीक बनाया। वास्तव में अंजीर के पत्तों से बने पौधों के वस्त्र एक दिन भी नहीं चल सकते थे और उन्हें बार बार ठीक करना पड़ता था। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यह कहते हुए अनंत जीवन दिया, तुम आदम और हव्वा आओ, मैंने पशु की खाल का नया अंगरखा बनाया है, उसे पहन लो। यह उस जानवर की खाल है जो तुम्हारे लिए मरा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को नया जीवन देने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता से आशीषित त्वचा के अंगरखे से आदम और हव्वा को कपड़े पहनाए। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए और उन्हें पहनाया, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने विश्वासियों को अपनी धार्मिकता का उद्धार दिया है। हालांकि मनुष्य जाति का उद्धार, जो परमेश्वर के उद्धार से अलग था, वह था अंजीर के पत्तों से बना वस्त्र। परमेश्वर ने हमें चमड़े के अंगरखे पहनाए, जो परमेश्वर की धार्मिकता है। प्रभु ने हमें अपना मांस और लहू देकर परमेश्वर की धार्मिकता से हमें हमारे पापों की माफी दी। उसने हमारी जगह सारे न्याय को स्वीकार करने के लिए अपने बपतिस्मा और क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हमारे पापों को ले लिया। जब हम यीशु के बपतिस्मा और लहू के सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें पापों की माफी देता है। यह सुसमाचार है जो पापियों को उनके पापों से बचाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की धार्मिकता का अस्वीकार करके जगत में खुद से अपनी धार्मिकता को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपनी धार्मिकता का त्याग करना ही चाहिए। रोमियो अध्याय 10 वचन 1 से 4 में लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। इसलिए इसराइलियों ने परमेश्वर की धार्मिकता की उपेक्षा करते हुए अपनी धार्मिकता को स्थापित करने के लिए अपने विधिवाद पर जोर दिया। परमेश्वर ने मनुष्य को पाप के प्रति सजग करने के लिए व्यवस्था दी है। लोगों को 10 आज्ञाओं के माध्यम से पाप का ज्ञान हुआ है और परमेश्वर के उद्धार की धार्मिकता में विश्वास करके पाप की माफी प्राप्त होती है, जो उन्हें तंबू की बलि प्रथा के माध्यम से उनके पापों से बचाता है। इसलिए तंबू के पाप बलि का तात्पर्य है कि यीशु नए नियम में परमेश्वर का प्रतिनिधि है। हालांकि इसराइल परमेश्वर की इस धार्मिकता को नहीं जानते हैं। यीशु ने बपतिस्मा क्यों लिया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस जगत के सभी पापों को धोने के लिए यीशु को बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा लेने से ठीक पहले यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यही कारण है कि यीशु ने बपतिस्मा लिया। उसने बपतिस्मा लिया ताकि वह मनुष्य जाति के सभी पापों को धो सके। उन्होंने बपतिस्मा लेकर इस संसार के पापों को धो लिया। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसने सभी पापों को उठा लिया और पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। हालांकि इसराइल ने विश्वास नहीं किया कि यीशु पापियों का संपूर्ण उद्धारकर्ता बन गया। इसराइलियों ने अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं किया है, लेकिन यीशु हर विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के लिए व्यवस्था का अंत है। व्यवस्था के अंत का अर्थ है कि यीशु ने जगत के सारे पापों को धो दिया। सारे विश्वासियों को पवित्र करने के लिए मसीह ने व्यवस्था के श्राप का न्याय सहा था। उसने व्यवस्था के श्राप को समाप्त कर दिया। यीशु ने सारे लोगों को उनके पापों से छुड़ाया। यीशु ने सारी मनुष्य जाति के पापों को धोने के लिए बपतिस्मा लिया था। उसने बपतिस्मा लेने के लिए अपनी देह यूहन्ना को सौंप कर और जगत के सारे पाप अपनी देह पर उठाकर जगत के सारे पापों को उठा लिया। इस प्रकार उसने सारे लोगों को उनके पापों से बचाया। उसने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा इस जगत के पापों को दूर करके व्यवस्था के श्राप के न्याय का अंत किया। उसने हमें न्याय और व्यवस्था के श्राप से पूरी तरह से बचाया। यह व्यवस्था का अंत और परमेश्वर के उद्धार की धार्मिकता की शुरुआत थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लेकर यीशु ने संपूर्ण रूप से जगत के पापों को दूर कर दिया और क्रूस पर चले गए। यदि कोई व्यक्ति यीशु के उद्धार पर विश्वास करता है तो यह कैसे संभव है कि उसके हृदय में पाप हो? क्योंकि विश्वास से विश्वास के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है। यीशु का बपतिस्मा और लहू परमेश्वर की धार्मिकता रही है। परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करना यीशु के बपतिस्मा और लहू में विश्वास करना है। परमेश्वर की धार्मिकता उचित तरीके से यीशु के बपतिस्मा के द्वारा पूरी हुई थी। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विश्वास करें, तब आप अपने सारे पापों से बच जाओगे। यीशु के बपतिस्मा के द्वारा पाप रहित बनने के लिए पापियों को धार्मिकता दी गई थी। इसके अलावा परमेश्वर के न्याय की धार्मिकता यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना था। मसीह व्यवस्था का अंत है। परमेश्वर का न्याय उन लोगों के लिए आएगा जिनका न्याय तब तक नहीं हुआ जब तक व्यवस्था मौजूद है। परमेश्वर की व्यवस्था पाप को प्रकट करती है और साबित करता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, एक अभिशाप और नरक है। इसलिए यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर लहू ने व्यवस्था के अभिशाप को समाप्त कर दिया। यीशु ने हमारे सारे पापों को उठा लिया और सब धार्मिकता को पूरा करने के लिए व्यवस्था का अंत कर दिया। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। आइए मत्ती अध्याय 25 वचन 1 से 13 को देखें। यहां 10 कुंवारियां दृष्टांत है जो अपने दुल्हे हमारे प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। आइए वचन के माध्यम से देखें कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दुल्हों से भेंट कराने को निकली। उनमें 5 मूर्ख है और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दुल्हों ने आने में देर हुई तो वे सब ऊंघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसने भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पुराना हो, भला तो यह है कि तुम बचाने बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। उसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। मत्ती अध्याय 25 वचन 1-13। यह लिखा है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मसाले लेकर दुल्हों से मिलने के लिए निकली थी। स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करता है? 10 कुंवारियों में से किसने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश किया? कुछ कुंवारियां जो यीशु पर विश्वास करती थी फिर भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में सक्षम क्यों नहीं थी? प्रभु उपरोक्त भाग के माध्यम से हमें बताते हैं, 10 में से 5 कुंवारियां मूर्ख थी और अन्य 5 बुद्धिमान थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तुली लेकिन अपने साथ तेल नहीं लिया। मसाले कलुष्य को दर्शाती है। उन्होंने अपनी मसाले तुली लेकिन अपने साथ कोई तेल नहीं लिया। यह तथ्य उन लोगों को दर्शाता है जो बिना पवित्र आत्मा के कलिश्य जाता है। बाइबल में तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मूर्ख ने क्या किया? उन्होंने अपनी मशाले तो ली परंतु तेल नहीं लिया। एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता हो लेकिन जिसका नया जन्म नहीं हुआ है वह समर्पित रूप से कलिश्य में जा सकता है। हर कोई कहता है मेरी कलिश्य वास्तव में रूढ़िवादी है। इस दुनिया का हर मसीही ऐसा कहता है। उन्हें संस्थापक पिता और उनके संप्रदायों के कुछ पात्रों पर बहुत गर्व है। जो मूर्ख थे वे अपनी मशाले ले गए और अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु बुद्धिमानों ने अपनी मशालों के साथ अपने बर्तनों में तेल लिया। मनुष्य क्या है? मनुष्य परमेश्वर के सामने एक पात्र है। वह धूल है। मनुष्य धूल से बना है। मनुष्य जाति एक ऐसा बर्तन है जिसमें परमेश्वर समा करते हैं। बुद्धिमानियों ने अपनी मशालों के साथ बर्तनों में तेल भी लिया। जिन मूर्ख कुंवारियों के पास केवल मसाले थी लेकिन तेल नहीं था, उन्होंने अपनी भावनाओं को जलाया। बाइबल हमें बताती है कि यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों में से कुछ मूर्ख कुंवारियां हैं। वे अपनी मसाले तो लेते हैं लेकिन तेल नहीं लेते। उनका मतलब है कि उनका नया जन्म नहीं हुआ है। क्या बिना तेल की बाती लंबे समय तक चलती है? या हमें यह जानना चाहिए कि बिना तेल की मशाल जल्दी जल जाती है, चाहे उसकी बाती कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। वे विश्वासी जिन्होंने अभी तक नया जन्म नहीं पाया है, उनमें सबसे पहले प्रभु के प्रति प्रेम की तीव्र भावना है। यह लगभग 4 या 5 साल तक चलता है, बाद में प्रभु के लिए उत्साहित प्रेम बुझ जाता है। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके पास पाप की माफी नहीं है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ है या बिना तेल यानी कि पवित्र आत्मा के है, वे इस बात की बातें करते हैं, मैं बहुत समय पहले अच्छा विश्वासी हुआ करता था, मैं पहले अच्छा था लेकिन अब नहीं, तुम जल्दी ही मेरे जैसे बन जाओगे। वे झूठे भविष्यवक्ता और झूठे संत हैं जो नया जन्म लिए बिना धार्मिक जीवन जीते हैं। उनके पास उद्धार का विश्वास होना चाहिए क्योंकि उनका विश्वास तेल यानी कि पवित्र आत्मा पर आधारित नहीं है। उनका विश्वास केवल उनकी भावनाओं पर आधारित होता है। उन्हें यीशु मसीह के पानी और लहू में विश्वास करके उद्धार प्राप्त करना चाहिए और एक उपहार के रूप में परमेश्वर का तेल प्राप्त करना चाहिए। बाती मनुष्य हृदय को दर्शाती है। उपरोक्त भाग में कुंवारियां दूल्हे की प्रतीक्षा करती है। यहां हमें इसराइलियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से समझना चाहिए। रात में उनकी शादी की रस्में होती है और यह दूल्हे के आने पर शुरू होती है, इसलिए दुल्हन को अपने दूल्हे की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसराइलों का विवाह समारोह ऐसा ही था। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊंघने लगी और सो गई। वहां शोर हुआ और देखो दूल्हा आ रहा है। तब वे कुंवारियां उठी और अपनी मसाले ठीक करने लगी। जब वे 10 कुंवारियां दूल्हे का इंतजार कर रही थी, तब दूल्हा धूम मचाता हुआ आया, देखो दूल्हा आ रहा है। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। मूर्ख हमेशा निर्बुद्ध होते हैं, उन्हें दूल्हे के आने से पहले तेल तैयार करने और रखना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मशाल की बाती कितनी कमजोर है, तेल वाली मसाले बुझती नहीं है। मूर्ख कुंवारियां जिनके पास बिना तेल की मसाले थी, वे केवल बाती जलाती थी। इसका मतलब है कि केवल उनके हृदय जले थे। मुझे नया जन्म लेना है, नया जन्म पाए व्यक्ति सा जीवन जीना है और पवित्र आत्मा से भरना है। वे इस तरह अपने दिलों को जलाते हैं। हमारे बचपन के समय केरोसिन के दिए रात में कमरों में रोशनी करते थे। यदि हम दिए को कागज की एक पट्टी जलाने देते हैं तो यह पलक झपकते ही जल जाएगा। आग 1 फुट से अधिक लंबी और बहुत तेज होगी, लेकिन यह तुरंत बुझ जाएगी। मूर्ख कुंवारिया जो नरक में जाती है, वे वो है जो बिना तेल के अपने दिलों यानी कि भावनाओं को जलाती है, और जिनके विश्वास की आग तब बुझ जाती है जब उन्हें वास्तव में प्रभु से मिलना होता है। उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। वे सोचते हैं कि उनके पास पवित्र आत्मा न होने के बावजूद भी वे सही तरीके से विश्वास करते हैं। आओ जलती हुई आत्मा, आओ। वे एक बड़ी हलचल में है। फिर महिलाएं नृत्य करती है, वे इसे पवित्र आत्मा का नृत्य कहते हैं। वे अपने स्तनों को लहराते हुए कहती है, आओ कृपया आओ। वे मूर्ख और पागल है। यदि हमारे पास अभी भी उद्धारकर्ता के सामने पाप है तो हम मूर्ख है। भले ही हम यीशु पर विश्वास करें, लेकिन यदि हमारे हृदय में पाप है तो हम मूर्ख कुंवारियों के समान होंगे। मूर्ख कुंवारी कभी मत बनिए। प्रभु कैसे उस दुल्हन से विवाह कर सकता है जिसके अंदर पाप है? यहोवा पवित्र परमेश्वर है, दुल्हा परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र है जिसमें कोई पाप नहीं है। परमेश्वर हमारा दुल्हा है। हालांकि आप पाप के लिए बहुत परमेश्वर से मिलने की कोशिश कैसे कर सकते हैं? क्या आप अपने हृदय में पाप के साथ परमेश्वर से मिलना चाहते हैं? यह बहुत ही तुच्छ और मूर्खतापूर्ण बात होगी। यीशु हमारा दुल्हा जगत में आया और उसने दुल्हनों को पवित्र किया। उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा उनके सारे पापों को धोकर अपनी दुल्हनों को धर्मी लोगों में बदल दिया। उसने उन्हें अपनी दुल्हन के रूप में चुना। जब समय पूरा हो गया तो उनमें से 5 ने कहा, कृपया चलो। हालांकि उनमें से 5 अभी भी अंधेरे में खड़ी थी। जब उनके चेहरे काले हैं तो वे विवाह समारोह कैसे कर सकते हैं? दूल्हा आया और बोला, कैसी हो तुम? बाद की 5 दुल्हनों के चेहरे उनके पापों के कारण काले हो गए थे। वे गहरे दुख में थे क्योंकि उनके पाप उनके हृदयों में यहां वहां जुड़े हुए थे। प्रभु कैसे उन दुल्हनों से विवाह कर सकता है जो अपने पापों के कारण रोने वाली है? धन्यवाद हे प्रभु मुझे इस प्रकार पवित्र करने के लिए। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मिक दुल्हे के साथ खुश होगा, भले ही वह कमजोर हो, क्योंकि दुल्हा उससे प्यार करता है और उसकी सभी कमजोरियों और पापों को धो देता है। दुल्हा आमतौर पर अपनी दुल्हन को मेकअप लगाने के लिए, कपड़े भेजने के लिए और सभी बेहतरीन इत्र और सौंदर्य प्रसाधन के लिए ले जाता है। फिर दुल्हन को उन सभी चीजों के साथ तैयार किया जाता है ताकि वह दुल्हे से मिलने के लिए तैयार हो। हमारे प्रभु को इस जगत में दुल्हे के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया था, ताकि हम उनसे उनकी दुल्हन के रूप में मिल सके। उसने यर्दन नदी में हमारे पाप की माफी के लिए अपना शरीर दिया और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की थी में, यूहन्ना अध्याय 1:14। प्रभु ने स्वयं हमारे सभी पापों को दूर किया ताकि हमें प्रभु में विश्वास करके अनुग्रह, सच्चाई और पाप की माफी की परिपूर्णता मिले। दुल्हे ने यर्दन नदी में अपनी सभी दुल्हनों के पापों को दूर किया। प्रभु ने क्रूस पर उनके स्थान पर न्याय को उठाकर अपनी दुल्हनों को उनके पापों से बचाया। क्या हम पैसे और योग्यता से पवित्र आत्मा को खरीद सकते हैं? हालांकि मूर्ख कुंवारियों ने बुद्धिमानों से तेल साझा करने के लिए कहा, क्योंकि दुल्हे के निकट आने पर उनकी मसाले बुझी जा रही थी। क्या हम पवित्र आत्मा को साझा कर सकते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को पैसे से खरीद सकते हैं? क्या हम पाप की माफी को अच्छे कर्मों, योग्यता या पैसे से खरीद सकते हैं? बुद्धिमानों ने उन्हें जागृति सेवा प्रचारकों से पवित्र आत्मा खरीदने के लिए कहा। मूर्खों ने सोचा कि वे पहले ही उनसे खरीद चुके हैं। उन्होंने सोचा कि वे पैसे से तेल खरीद सकते हैं। उन्होंने जोश के साथ धार्मिक जीवन व्यतीत किया, यह सोचकर कि बड़ी भेंट और सेवाएं, रूढ़िवादी कलीसिया में जाने और बार बार प्रार्थना करने से उन्हें कुछ मिलेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की किसी भी चीज से परमेश्वर ने दी हुई पाप की माफी को खरीद नहीं सकता है। मूर्ख अपनी भावनाओं को तब तक जलाने की कोशिश करते हैं जब तक कि वे प्रभु के सामने खड़े न हो। 5 मूर्ख कुंवारियों में से एक ने यह कहते हुए धार्मिक जीवन शुरू किया, मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगी, मैं प्रार्थनाओं और पश्चाताप की प्रार्थनाओं के लिए एक पहाड़ पर भी जाऊंगी, चलो उसकी सेवा करके चलते हैं, विदेश में सुसमाचार का प्रचार करने चलते हैं। अंत में दुल्हा बड़ी धूमधाम से आया। जब दुल्हा आया तो मूर्ख तेल मोल लेने को गई, परंतु जिन कुंवारियों के पाप माफ हुए और जिन्होंने तेल यानी कि पवित्र आत्मा तैयार किया था, वे विवाह के भोज में गई। सब कुछ तैयार करने के बाद दुल्हा दुल्हन से मिला, फिर उसने दरवाजा बंद किया। यीशु ने केवल ऐसे ही 5 कुंवारियों को नहीं चुना। बाइबल में 5 संख्या का अर्थ अनुग्रह है। 5 कुंवारियां उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास अनुग्रह से पाप की माफी है और परमेश्वर के अनुग्रह और धार्मिक कार्यों में विश्वास करते हैं। वे उन कामों को पहचानते हैं जो दुल्हन ने उनके लिए किए हैं और प्रभु की उस धार्मिकता पर विश्वास करते हैं जो उन्हें धर्मी बनाती है। हालांकि अन्य कुंवारियां अंत में आई और कहा, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल, परंतु उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हम केवल तभी पवित्र आत्मा का उपहार प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पाप दूर हो जाए। जो लोग तेल को तैयार नहीं करते वे प्रभु से नहीं मिल सकते। प्रभु केवल उन्हीं ही स्वर्ग के राज्य में लेंगे जो परमेश्वर की धार्मिकता में विश्वास करते हैं और स्वर्ग के राज्य की प्रतीक्षा करते थे और जिनके हृदय में वास्तव में पाप की माफी थी। यहोवा ने वायदे के वचन कहे, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो फिर हमारे पापों की माफी के बाद क्या होगा? बाइबल कहती है, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यदि आप परमेश्वर की धार्मिकता का सुसमाचार प्राप्त करते हैं तो आपके हृदय के पाप वास्तव में मिटा दिए जाएंगे और पवित्र आत्मा आपके पास आएगा। हम शारीरिक रूप से परमेश्वर की पवित्र आत्मा को महसूस नहीं कर सकते, फिर भी पवित्र आत्मा मौजूद है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोई पाप नहीं है क्योंकि हमारे दिलों में पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन है, यह वास्तव में मौजूद है। वह जो परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करता है वह धर्मी बन जाता है, फिर भले ही वह कमजोर हो। हालांकि जिसके पास प्रभु की धार्मिकता नहीं है वह पापी रहता है क्योंकि उसी में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई। प्रभु पानी और लहू के द्वारा आया, उसने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमें हमारे पापों से बचाया। जब उसने बपतिस्मा लिया तब उसने हमारे सारे पापों को दूर कर दिया और अपना लहू बहाकर हमारे सब पापों के लिए जो न्याय था उसे प्राप्त किया। प्रेरित यूहन्ना, पत्रस और पौलुस इस बारे में क्या कहते हैं? वे पूरी तरह से यीशु के मांस और लहू के बारे में बात करते हैं। वे यीशु के बपतिस्मा और क्रूस पर उसके लहू के बारे में बात करते हैं। मत्ती अध्याय 3 वचन 13 और 17 स्पष्ट रूप से यीशु के बपतिस्मा का वर्णन करता है। यीशु ने पापियों को पाप रहित करने और यर्दन नदी में जगत के सारे पाप को धोने के लिए बपतिस्मा लिया था। आइए पहला पत्रस अध्याय 3 वचन 21 की ओर देखते हैं। पत्रस गवाही देता है कि उसका बपतिस्मा उद्धार का प्रतिबिंब है। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। ऐसा लिखा है कि उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। यीशु का बपतिस्मा जो उसके शरीर के द्वारा हमारे सारे पापों को ले लेता है वह हमारे उद्धार का प्रमाण है। यह तथ्य कि उसने क्रूस पर लहू बहाया इस बात का प्रमाण है कि हमें हमारे पापों के लिए दंडित किया गया था। क्या आप देख सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु ही वह है जो पानी, लहू और पवित्र आत्मा के द्वारा आया था। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 6-9। यीशु को मनुष्य के शरीर में जगत में भेजा गया और हमारे सब पापों को उसी प्रकार उठा लिया जिस प्रकार महायाजक हारून ने अपने लोगों के पापों को दूर करने के लिए बलिदानों पर हाथ रखे थे। पानी वह दृष्टांत है जो हमें बचाता है यानी कि बपतिस्मा। लिखा है कि यह गंदी देह को दूर करना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पाप की माफी प्राप्त करने के बाद हम पाप नहीं करते हैं। हम यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास करने के द्वारा पाप की माफी प्राप्त करते हैं। तो क्या हम शरीर के साथ पाप नहीं करते? हाँ हम करते हैं। बहुत से लोग पाप की माफी को गलत समझते हैं और ऐसी बातें कहते हैं, यदि तुम्हारे हृदय में कोई पाप नहीं है तो तुम फिर से पाप नहीं करोगे। यह एक गलत फहमी है। बाइबल कहती है, निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। सबोपदेशक अध्याय 7:20। देह अभी भी कमजोर है, यह तब तक कमजोर है जब तक यह मर नहीं जाता। यह तब तक पाप करता है जब तक वह मर नहीं जाता। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यीशु के बपतिस्मा और लहू में हमारे विश्वासों के द्वारा हमारा विवेक परमेश्वर के प्रति अच्छे विवेक में बदल जाता है। प्रभु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को ले लिया है, और इस तथ्य पर हमारे विश्वास के द्वारा हमारा विवेक परमेश्वर को हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता कह सकता है। हमारे हृदय के लिए यीशु का बपतिस्मा और लहू आत्मिक पोषण है। हृदय के लिए पोषण यीशु का बपतिस्मा और लहू है। हृदय के लिए पोषण और हमारे पापों को धोने वाले प्रतिरूप यीशु का बपतिस्मा है। इस प्रकार प्रेरित पत्रस ने कहा कि बपतिस्मा प्रतिरूप है जिसने हमें बचाया। आइए पहला पत्रस अध्याय 1:22-23 को देखें। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाश्वर नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। हमें यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू में विश्वास करने के द्वारा नया जन्म पाया है और सभी पापों की माफी प्राप्त की है। हम परमेश्वर के लिखित वचन पर विश्वास करके नया जन्म पाते हैं। हमारा नया जन्म परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हुआ है। हालेलुया। नया जन्म उस वचन के माध्यम से होता है जो हमेशा ठहरता है। परमेश्वर का वचन सिद्धांत है जो एक मापने वाली छड़ी को दर्शाता है। यह उद्धार का मानदंड है। परमेश्वर के उद्धार को नापने वाला मापदंड कभी नहीं बदलता। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना अध्याय 1:29 में कहा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना जिसने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया था, वह सच्ची जीवन की रोटी है जो अपने मांस और लहू से हमें बचाती है। हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र किए गए हैं और बचाए गए हैं। बाइबल कहती है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, परमेश्वर से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी बन सकते हैं। क्या आपको पवित्र किया गया है? आमीन। क्या आपके अंदर कोई पाप नहीं है? यह सुसमाचार है, शुभ संदेश, ग्रीक में यूगेलियन। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? यह सच है कि प्रभु ने हमें अपना मांस और लहू देकर हमारे सभी पापों को मिटा दिया। परमेश्वर की धार्मिकता ने हमें पवित्र होने दिया। परमेश्वर की धार्मिकता यह है कि यीशु, जो पाप रहित था, उसने जगत के पापों को उठा लिया और पापियों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। यह पानी है यीशु का बपतिस्मा जिसने जगत के सब पापों को शुद्ध किया। परमेश्वर की धार्मिकता इस तथ्य के माध्यम से दी गई है कि यीशु ने अपने बपतिस्मा और सूली पर चढ़ाए जाने के द्वारा दुनिया के पापों को दूर किया। परमेश्वर की धार्मिकता में उसका बपतिस्मा और मृत्यु शामिल है, और क्रूस हमारे न्याय का प्रतीक है। यह परमेश्वर की धार्मिकता है जो सुसमाचार में प्रकट हुई।